नमोयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति सर्वदान्तिकम् वन्दे अनन्ताद्भुतेश्वरजं श्रीचैतन्यमहाप्रभु निशोऽयपि यत्प्रसादात् स्याद् भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः भूतैर्महद्भिमा पुरो विभो निर्मायसे ते जगमोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणान्षोडशोडशात्मकः सोलङ्कृतिश्च भगवान् वचांसि मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासेन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तार भवता सोमसूर्जयः राज्ञां च वंशानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्जयः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् हरे कृष्ण श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तार भवता सोमसूर्जयो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्जयो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्जयो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्जयो राज्ञां च वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं च वयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञा वंशानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययो राज्ञं च वयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् श्री राजवाच। महाराज परीक्षित ने पूछा, कथित पहले से वर्णित हो चुका है जो वंश विस्तार, वंश का विस्तार से वर्णन भावता आपके द्वारा सोम सूर्यो चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के राज्ञाम राजाओं का च तथा उभय दोनों वंश्यानाम वंश के सदस्यों का चरितम चरित्र परम श्रेष्ठ अद्भुतम तथा अद्भुत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। महाराज परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्र देव तथा सूर्य देव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्र सहित विशद वर्णन किया है। तात्पर्य, नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनके ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज, कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुन सुक्षता निकृतो रुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयान् जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता के घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिसे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारिका चले गए, जहाँ उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों के साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। जदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोम वंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे जादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षत्रिय वंश हैं, राजवंश हैं। चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतया वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो इस सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतीर्ण हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में 24 अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोम वंश तथा सूर्य वंश के सारे राजा महान और शक्तिशाली थे तथा और महाराज दीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्यम चौभय वंश्यानम चरितम परमाद्भुतम। फिर भी वे सोम वंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सर्म सुकल्प वृक्ष लक्षा विदेश सुरभीर विपालयंतम। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वैकुंठ में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रह तथा यथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे भगवद गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में उन आध्यात्मिक प्रकृति उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। नवम स्कंद के उपर्युक्त श्लोक जातो गतः पितृगृहात का विस्तृत वर्णन इस दसम स्कंद में मिलेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली इसके लिए कि हमें भगवान के विषय में कुछ कहने का अवसर दिए। आज दसम स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से 10 विषयों का वर्णन है, जिसका अंतिम दसवां विषय है आश्रय तत्व। तो उस आश्रय का वर्णन इस दसम स्कंद में हुआ है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति निरोध आश्रय इत्यादि। तो अलग अलग स्कंदों में छिटपुट इन विषयों का वर्णन हुआ है। तो आश्रय तत्व श्री कृष्ण है, और शुद्ध गोस्वामी दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में इन विषयों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसी 10वें तत्व के विस्तृत विश्लेषण के लिए व्याख्या के लिए इन 9 तत्वों का वर्णन हुआ है। मुख्य फोकस 10वां तत्व पर है, आश्रय तत्व पर। इसी को प्रकाशित करने के लिए 10 विषयों का वर्णन 9 विषयों का वर्णन हुआ। तो उसमें विस्तार से वर्णन किए हैं और सबका परिभाषा भी बतलाते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि का। जब एक एक चीज को विस्तृत ढंग से एनालिसिस करके समझेंगे तब आश्रय तत्व अपने आप समझ में आने लगेगा। तो पहले सर्ग का वर्णन हुआ, सृष्टि। तो सर्ग जो भगवत सर्ग है, भगवान के द्वारा जो सृष्ट पदार्थ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि, ये महत तत्व अहंकार आदि, इसको सर्ग कहते हैं। और उसी सर्ग के विस्तार को विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर अब तक जो सृष्टि का विस्तार हो रहा है उसको विसर्ग कहते हैं संक्षिप्त। इसके बाद स्थान पोषण, भगवान अपनी एक क्षमता से एक जगह से संपूर्ण जगत को व्यवस्थित देखते हैं करते हैं उसको स्थान कहते हैं। और पोषण, भगवान की एक जनरल कृपा होती है सभी पालन के लिए और एक विशेष अनुग्रह उसको पोषण कहते हैं स्पेशली भक्तों के लिए। तो अलग अलग स्कंदों में वर्णन हुआ, तीसरे स्कंद चौथे स्कंद में सर्ग विसर्ग का वर्णन हुआ, बाद में स्थान का भी वर्णन हुआ, पोषण छठवें स्कंद में, फिर ऊती। ऊती का अर्थ है कर्म वासना। तो इस संसार में तीन तरह की वासना है हृदय में कामना, एक है सद वासना, असद वासना और मिश्र वासना, मिक्स। तो केवल भगवान के प्रीति की जो कामना होती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसको सद वासना कहते हैं, आध्यात्मिक वासना। और कृष्णेतर विषयों की जो वासना होती है भौतिक भोगों की उसको असद वासना कहते हैं। और कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा उसको मिक्स वासना। तो सातवें स्कंद में पांच पांच अध्यायों में तीनों वासनाओं का वर्णन है। प्रारंभ में असद का वासना का वर्णन है जिसका नेतृत्व हिरण्यकश्यपु करता है पांच अध्यायों में। असद वासना, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी चाहना ये असद वासना है। तो आप सप्तम स्कंद में इसको पढ़ सकते हैं, हिरण्यकश्यपु के असद वासनाओं का विस्तृत वर्णन पांच अध्यायों में हुआ है। इसके बाद सद वासना का वर्णन हुआ है जिसका नेतृत्व प्रहलाद महाराज करते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त उनको कुछ नहीं चाहिए। तो छठवां से दसवां अध्याय तक प्रहलाद महाराज के सद वासना का वर्णन हुआ और फिर मिक्स वासना जो है मिश्र वासना उसका नेतृत्व तो नहीं लेकिन उत्तरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं संसार के लोगों से। महाराज युधिष्ठिर संसार के लोगों के तरफ से देवर्षि नारद से संसारिक जीवों की दशा पर प्रश्न करते हैं। तो 11 से 15 अध्याय उसमें गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, जति धर्म, स्त्री धर्म, सभी धर्मों के विषय में, सबके कर्तव्यों के विषय में जिज्ञासा करते हैं। तो इस तरह से उती, फिर आगे मनवंतर जिसका वर्णन आठवें स्कंद में हुआ है, और फिर ईशानु कथा। ईशानु कथा में तीन शब्द है, ईश, अनु और कथा। भगवान और अनु माने फॉलोअर, भगवान के भक्त, और कथा मतलब कथा, भक्त भक्तों की कहा हुई है। तो अभी दसम स्कंद के पहले ईशानु कथा नवम स्कंद में वर्णन हुआ। तो ईशानु कथा का विस्तार से वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने दो महत्वपूर्ण वंशों को लिया, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो दो वंश बहुत उत्कृष्ट हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान के समर्पित। तो सभी वंश भगवान से प्रारंभ होता है। बहुत सुंदर ढंग से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान गर्भोदक शाही के नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा अनेक प्रजापति पुत्रों को जन्म देते हैं और उन्हीं पुत्रों में मरीचि और मरीचि के कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्यदेव। कश्यप के अनेक पत्नियां थी, विस्तार से वर्णन है, जिसमें एक थी अदिति और अदिति के पुत्रों में आदित्य सूर्यदेव, और सूर्य से जो वंश चला उसको सूर्य वंश कहते हैं, अद्भुत। तो सूर्य के इक्ष्वाकु आदि अनेक पुत्र हुए आगे चलकर। और इस वंश में अनेक राजाओं का वर्णन हुआ है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपने वंश का विस्तार से वर्णन किया, कथितो वंश विस्तार, कथित आपने कहा है विस्तार से वंश का वर्णन भवता आपके द्वारा हुआ है, लेकिन सो सूर्यो कह रहे हैं, पहले सूर्य का वर्णन हुआ है सूर्य वंश का, इसके बाद चंद्र वंश का, लेकिन इनके मन में चंद्र वंश में अवतरित कृष्ण के विस्तार से कथा सुनने की उत्कट लालसा है, इसलिए सोम सूर्यो कह रहे हैं। सोम वंश का वर्णन बाद में हुआ, लेकिन महाराज परीक्षित की उतावला है चंद्र वंश में उत्पन्न श्री कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए। तो वंश विस्तार के क्रम में सूर्य वंश का वर्णन करते हुए सूर्य के पुत्र विवस्वान वैवस्वत मनु का वर्णन करते हैं। विवस्वान के पुत्र, सूर्य का ही एक नाम है विवस्वान, और उनके पुत्र वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन इक्ष्वाकु आदि का वर्णन करते हैं। उसी में महाराज शर्याती नभग अम्बरीश का उज्ज्वल चरित्र का वर्णन हुआ है, सूर्य वंश के राजा हैं। और अम्बरीश महाराज की कथा आप सुने हैं। फिर आगे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए महाराज मंधाता की कथा कहते हैं, और मंधाता के पुत्रियों का वर्णन करने के क्रम में शबरी की भी कथा कहते हैं। शबरी मुनि ने मंधाता के 50 पुत्रियों से विवाह किए थे। इसके बाद त्रिशंकु हरिश्चंद्र, ये सूर्यवंशी राजा हैं, इनका वर्णन करते हुए फिर सगर महाराज के उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन करते हैं, जिनके पुत्रों ने समुद्र बना दिया एक घोड़े के अन्वेषण में, सागर, सगर के पुत्र। इसके बाद भगवान कपिल के कोप भाजन होने के कारण उन सबके मृत्यु हुई, और उनके उद्धार के लिए गंगा अवतरण की कथा कहते हैं। इसमें भगीरथ जैसे समर्थ राजा ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कराया। इसी प्रकार आगे वर्णन करते हुए महान राजाओं का वर्णन कर रहे हैं सगर वंश के, और उसी क्रम में रामचरित का वर्णन करते हैं। खटवांग आदि राजाओं का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं, सूची प्रस्तुत करते हुए। बाद में महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र में, पुत्र के रूप में स्वयं भगवान श्री राम के रूप में आते हैं, और रामचरित का वर्णन दो अध्यायों में करके फिर इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजाओं का वर्णन करके निमि वंश का वर्णन करते हैं। इस तरह से 13 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन हुआ 9 स्कंद में। इसके बाद 14वें अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक चंद्र वंश का वर्णन। तो चंद्र वंश का वर्णन करते हुए भी उसी क्रम से सारा वंश भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान के नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, और चंद्रमा के बुध, बुध का पुरुरवा, पुरुरवा का नहुष, नहुष का जजाति, और जजाति के पुत्रों में सबसे जदु, और उसी जदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए शुभसेन के पुत्र के रूप में। वो लंबा चार्ट है जदुवंश का वर्णन विस्तार से किए। और जब जजाति महाराज के 5 पुत्र थे, जदु उसमें सबसे बड़े थे, जदु, अनु, तुर्वसु और पुरु, एक का नाम क्या था, 3 और 2 5, जदु, अनु, तुर्वसु, द्रुहु और पुरु। हाँ, तो उस पुरुवंश में कुरु महाराज राजा हुए, और उस कुरुवंशियों के कर्म क्रम में कौरवों और पांडवों का वर्णन किए। और जदुवंश में महाराज शिवसेन के पुत्र के रूप में भगवान आए। तो इतना जदुवंश का वर्णन विस्तार से करने लगे, इतना प्रसन्न थे सुखदेव गोस्वामी कि कहते हैं कि अब मैं उस वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ जिस वंश का वर्णन सुनने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जदुर्वंशम नर श्रुत्वा सर्व पापी मुच्यते, सारे पापों से मुक्त व्यक्ति हो जाएगा केवल इस वंश का वर्णन सुनने से। तो जदुवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन इतना विस्तार से करने लगे, आनंद में करने लगे कि एकदम समय का अभाव हो गया। अब और बहुत सी सारी कथाएं कहनी है, इसलिए जदुवंश में अवतरित श्री कृष्ण की कथा को अति संक्षेप में सूत्र रूप में वर्णन करते हैं। तो सूत्र रूप में वर्णन करते हुए एकदम संक्षेप में यह महाराज परीक्षित को सहन नहीं हुआ। इतना संक्षेप में कृष्ण कथा, तो देखिए नवम स्कंद के अंत में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं वसुदेव ने पत्नियां थी और उन पत्नियों में देवकी, रोहिणी इत्यादि, तो उनके पुत्रों का वर्णन करते हैं पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां, आनक, दुंदुभे। वसुदेव की ये पत्नियां हैं और उनमें बलम, गदम, सारणम च, दुर्मदम, विपुलम, ध्रुवम, वसुदेवस्तु रोहिण्याम कृता दीनु दपादयत। ऐसे कई पुत्र हुए रोहिणी से जिनका वर्णन करते हैं बल, गद, सारण, दुर्मद और सुभद्रो, भद्रवाहश्च, दुर्मदो, भद्र एव च, पौरव्या स्तनया हेते भृत्याद्या द्वादशा भवन। पुत्रों का नाम रखते हुए और बाद में सभी पत्नियों का, पुत्रों का वर्णन करते हैं संक्षेप में, लेकिन इनका मेन फोकस है कृष्ण की तरफ, कृष्ण राम की तरफ। तो बाद में कहते हैं देखिए अब मैं आपको देवकी के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। देवस् वसुदेवस्तु देवक्यम अष्टम पुत्रम अजी जनत। देवकी के आठ पुत्र हुए जिनका नाम है कीर्तिमंतम, सुसेनम च, भद्रसेनम, उदारधी, ऋजुम, संवर्धनम, भद्रम, संकर्षण, महेश्वरम, अष्टमस्तु तयोराशि स्वयमेव हरि किल। नाम गिन रहे कीर्तिमंत, सुसेन, भद्रसेन, ऋजुम, समर्दम, भद्र और संकर्षण जो महेश्वर, और आठवां पुत्र के रूप में स्वयं भगवान हरि कृष्ण के रूप में आए। आठ पुत्रों का देवकी का वर्णन करके देखिए कैसे संक्षेप में लिस्ट दे रहे हैं सूत्र रूप में। और सुभद्रा च महाभाग तव राजन पितामही। इतना सुंदर कथा है, एकदम श्रोता के निकट आ गया वंश परंपरा। कह रहे हैं कि हे महाराज, हे महाराज परीक्षित, उसी देवकी के नौवें संतान के रूप में सुभद्रा का जन्म हुआ। सुभद्रा च महाभागा, और वह सुभद्रा कौन है? तव राजन पितामही, आपकी पितामही, आपके पिता को जन्म देने वाली सुभद्रा। तो सुभद्रा जो आपकी पितामही है वह भगवान की बहन और देवकी की नवी संतान। तो यहाँ तक कथा लाकर रख दिए। इसके बाद कहते हैं कि भगवान पृथ्वी पर केवल जदुवंश में ही नहीं आए, बार बार आते हैं। जदा जदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः। भगवद गीता में जो बात स्वयं भगवान कहते हैं उसी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जब जब धर्म का क्षय होता है और पाप की वृद्धि होती है, तदा तु भगवान ईसा आत्मनम सृजते हरि, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और न यस्य जन्मन होति कर्मण वा महीपते आत्माया विनेशस्य परस्य दृष्टुरात्मन। हे महाराज, भगवान के अवतार का कारण दूसरा नहीं है, आत्माया अपनी लीला के विस्तार के लिए, अपने स्वच्छंद लीला के लिए भगवान आते हैं। ये सब दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना तो अनुसंगिक रूप में हो जाता है, लेकिन यन माया चेष्टम पुंस स्थिति उपत्य प्यय ही अनुग्रह तनिवृत्ते आत्मलाभाय चेष्टते। जिस संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, उस प्रभु को क्या धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। उनके संकल्प से असुरों का विनाश हो सकता है और धर्म की स्थापना हो सकती है, फिर भी भगवान की एक विचित्र लीला है। अपने आनंद के लिए भगवान इस जगत में आते हैं और आकर इस पृथ्वी पर भरे हुए असुरों की अक्षौणियों में, एक दो संख्या नहीं, हजारों की संख्या में बढ़े हुए असुरों का विनाश करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। अच्छा, तो जिस समय भगवान अवतार लेते हैं उस समय तो साधु पुरुष दर्शन करते हैं, उनकी लीला कथा को प्रकट देखते हैं, सुनते हैं, उनको सुख मिलता है। द्वापर में भगवान आए, त्रेता में आए, लेकिन कलयुग में तो एक विशेष बात कह रहे हैं। कलौ जनिष्य मारा नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्त्यानाम सुपुण्यम व्यतनोज्जसः। सुखदेव गोस्वामी एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाले लोगों के लिए, कलौ जनिष्य मारा नाम, जो कलयुग में जन्म लेने वाले हैं, उनके दुख शोक और तम का पूरा पूरा नाश करने के लिए, अनुग्रहाय भक्त्यानाम, भक्तों कलयुग में के भक्तों पर विशेष स्पेशल अनुग्रह करने के लिए, सुपुण्यम व्यतनोज्जसः, द्वापर के अंत में भगवान ने अपने जस का विस्तार किया। अपने जस का विस्तार इसलिए किया कि कलयुग के लोग उसको सुनकर अपने शोक को, अपने तम को और अपने भाई को शांत कर सकते हैं। दुख शोक तमोनुदम, इस संसार के दुखों को कई तरह से वर्णन किया गया है, सब मिलाकर त्रिताप कहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, देह में होने वाले दुख, देवताओं के द्वारा दिए गए दुख, जीवों से जीवों को देने वाले दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक कहा गया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी जगह जगह में इसके अतिरिक्त भी दुख का वर्णन करते हैं। उसको कहते हैं शोक, मोह और भय। जो भूतकालिक दुख है, भूतकाल में पहले जो हमारे पास संपत्ति थी, हमारा प्रिय स्वजन थे और अचानक उनका वियोग हो गया, अचानक कोई मिनिस्टर पद छीन गया, इलेक्शन हार गए, कोई अपना बेटा कार दुर्घटना में मर गया, बहुत बड़ी लॉस हो गई, और उसको याद कर करके जब दुखी होते हैं तो उसको शोक कहते हैं। ये भूतकालिक दुख को वर्तमान में सोचकर दुखी होना शोक है। अब वर्तमान में अपनी स्थिति से हटकर, अपने स्वरूप से हटकर जब हम अज्ञान से ग्रसित होकर दुखी होते हैं तो इसको मोह कहते हैं। मोह, मेरा, मेरी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा राज, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, अहम ममेथी। संसार में रोज सूचना मिलता है कितने लोग मर गए कार दुर्घटना में, बम ब्लास्ट से, इलाहाबाद के भगदड़ में, क्या क्या, लेकिन उसे क्या मतलब है? उसमें अपना नहीं होना चाहिए, बस उसमें मेरा नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई बात नहीं। यह है मोह, मोह जनित दुख। अगर अपना है तो देखिए दुख, अरे हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया। तो यह है मोह, और यह है वर्तमान कालिक दुख, और फिर भविष्यत कालिक दुख है भय। अगर हम नहीं पैसा कमाएंगे तो बेटे की पढ़ाई कैसे होगी, बेटी की विवाह कैसे होगी, घर चाहिए, खान चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये भय बना रहता है, या और भी अनेक तरह के भय। तो इसको तम कहते हैं, ज्ञान को। तो इस पर प्रकार दुख शोक तमोनुदम, दुख वर्तमान के तो दुख को दुख कहते हैं। इस प्रकार हमको अज्ञान छा जाता है, ऐसे दुखों को समाप्त करने के लिए अनुग्रहाय भक्त्यानाम सुपुण्यम व्यतनोज्जसः, भगवान जस का विस्तार करते हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं कि यह जस श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, और जस्याम वै श्रूयमाणानाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयोपहा भयापहा। तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से, जिसमें भगवान के चरित्र है, उनके अद्भुत चरित्र का विस्तार भगवान किए, उस चरित्र को श्रीमद् भागवतम में रखा गया है, और उसको सुनने मात्र से कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुनने मात्र से श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुष से भक्ति उत्पद्यते पुनसाम। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम उत्पन्न हो जाता है और उसका साइड इफेक्ट क्या है, शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय जो संसारिक दुख है वो भी समाप्त हो जाता है। संसार का शोक मोह और भय समाप्त हो जाता है और इसके अतिरिक्त कृष्ण प्रेम मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लुगा रोटी नीके राखे आगहू को वेद भाके, भोजपुरी शब्द में उनका कुछ पदलियों में है। भजन करने वाला का जो भोजन कपड़ा मकान की चिंता है वो तो ठीक ठाक रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीचे रखें। और आगहू को वेद भाके, आगे क्या होगा उसको तो वेद बतला ही रहा है, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। अगर कोई उनका भजन करता है तो उनका दिव्य धाम मिलता है। तो इस तरह इसके लिए भगवान ने लीला किया कि कलयुग के लोग इसको सुने और सुन करके जस्मिन करण पीयूषे जसस तीर्थ वरे सकृत, अगर एक बार इस जस को सुन लिया, श्रोतांजलि रूपस्य धुनते कर्म वासना, जन्म जन्मांतर के संसारिक विषयों की जो वासना है वो समाप्त हो जाती है। वही भगवान अवतार लिए और अवतार लेकर के मुझ विष्णु अंदर मधुर सुरसेन सार कई श्लाघनीय हित सस्वत गुरु सिंजय पांडुवी, अवतार लेकर के जादवों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, गोपों के साथ और कौरवों पांडवों के साथ जो विचित्र लीला किए, उन लीलाओं को सुनने से। और उन लीलाओं में विशेषता क्या है, स्निग्ध स्मृति क्षितो दारई वाकई विक्रम लीलया निलोकम रमया मास्य मूर्त्यां सर्वांग रम्यया। क्या वर्णन करते हैं, सूत्र रूप में कहते हैं भगवान का स्निग्ध स्मित हसी मुस्कान, कहते हैं स्निग्ध स्मित स्मित मधुर, बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, उन मुस्कानों का वर्णन जो है। और जो उदार वाक्य है, बड़ी आत्मीयता पूर्वक उदारता पूर्वक जो प्रवचन बीच बीच में किए हैं भगवद गीता के रूप में या और कई जगह भागवत में उनका प्रवचन है अपने स्वजन संबंधियों के साथ, वह जो उदार वाक्य है और जो विक्रम लीला है, ऐश्वर्यपूर्ण भगवान की जो लीला है, उसको जो व्यक्ति सुनता है, जो उनका स्मित स्निग्ध मुस्कान देखता है, तो निर्लोकम रमया मासा, संपूर्ण निर्लोक समाज मनुष्य समाज को रमा देने वाला है। और मूर्तिया सर्वांग रमया, भगवान का श्री विग्रह इतना सुंदर है कि केवल मुख ही सुंदर नहीं है, सर्वांग रमया, जहाँ दृष्टि पड़ जाती है वहां से हटना नहीं चाहती है। गोपियां तो आपस में बात करते हुए रह जाती हैं, सखी तुम श्याम सुंदर को देखी, अरे कहाँ देखी, मैं तो उनके मोर मुकुट को तिरछी चितवन में ही हमारा चित फंस गया, नीचे उतर ही नहीं पाया। उनके तिलक को देखी, अगर किसी तरह जिसका नजर जहां गया वहां से हटता नहीं, आगे पीछे जा ही नहीं पाता है। कोई उनके हंसी को देख रहा है तो कोई उनके मोर पंख को देख रहा है, कोई ललाट को देखा तिलक को, कोई वक्षस्थल को देखा तो वही देखते रह गया। सर्वांग रम्या, तब इसको थोड़ा बड़ा श्लोक में वर्णन करते हैं, जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सबिलास हासम नित्योत्सवम न तत्रिपु दिशि भी पिबंतो नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश। जस्याननम, जिनका आनन बहुत सुंदर मुख है, मुख अपने आप में सुंदर है और उसमें चार चांद लगा देने वाली है मकराकृत कुंडल, मछली के आकार में कुंडल है जो उनके आनंद पर उनके गाल पर लटकता है और उनका गाल इतना सुंदर शीशे की तरह चमकता है कि वो कुंडल एक बाहर और एक भीतर प्रतिबिंब दिखता है, दोनों तरफ दो दो कुंडल दिख रहा है। और इसके साथ फिर कहते हैं चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम, सुंदर कपोल पर वह मकराकृत कुंडल शोभा दे रहा है और इसके साथ विलास हासम, इतना सुंदर हंसी है, मुस्कान है उनका, कि उनको जो व्यक्ति देखता है नित्योत्सवम, प्रतिदिन एक फेस्टिवल मचा रहता है, रोज उत्सव होता है, तो उस उत्सव में किसी फेस्टिवल में खाने पीने की व्यवस्था हो तो देखने से केवल संतोष थोड़े हो जाएगा। देखने सुनने से आनंद तब आएगा जब उसमें वैरायटीज हो, भोजन हो खाने का फर्स्ट क्लास, तब उत्सव का आनंद आता है। तो नित्योत्सवम न तत्रिपु, वहां उस उत्सव को देखने वाले लोग, प्रतिदिन उत्सव रहता था ब्रज में, लोग उस रूप को देखते थे। दिस भी पिबन, तो देखते नहीं थे, अपने आंख से उस रूप माधुरी को पीते थे, रूपामृत को, रूप रूपी अमृत को पीते थे। दिस भी पिबन, तो वह फेस्टिवल का भोज था, पीते थे उसको आंखों से। और कौन कौन, कुछ लोगों पर बात बंधन भी था, ये पियेंगे वो पियेंगे, तो नारिया नरोश्च मुदिता, नारियो नरश्च मुदिता, स्त्री और पुरुष दोनों पीते हैं और पीकर आनंदित रहते हैं उस उत्सव में। लेकिन एक टेंशन है, थोड़ा सा उस उत्सव में बाधा आता है, इसलिए लोग दुखी हो जाते हैं। कुपिता निमिष्य, उनके आंख पर जो पर्दा गिरता है पलक, इसलिए पलक के जो अधिष्ठाता है निमि या विधाता ब्रह्मा, उस पर वो लोग दुखी हो जाते हैं। मूर्ख विधाता को पता नहीं है कि यह भुवन सुंदर अवतार लेने वाला है, इस आंख पर पर्दा लगा दिया, बांके बिहारी की तरह डिस्टर्ब कर रहा है देखने में। ब्रजवासियों के आंखों पर ये पर्दा नहीं होना चाहिए था, पलक नहीं होना चाहिए था। गोपियां तो इतने आगे बढ़कर बात करती हैं कि क्या करोगी, ब्रह्मा जी की कथा जानती हो, उनका इतिहास, जगत की सृष्टि ब्रह्मा किया है ना, ब्रह्मा के बाप का पता है, कमल है, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। कमल चेतन पदार्थ थोड़े है, वो जड़ है, तो जड़ का बेटा कहाँ से चेतन हो जाएगा, बाप का असर तो उस पर होना ही चाहिए, वो जड़ से उत्पन्न है, इसलिए ब्रह्मा का ये दोष नहीं, वो बाप का खानदानी दोष है, उसके पैतृक दोष है। पिता जड़ है तो ब्रह्मा कि कितना श्रेष्ठ बुद्धि हो सकती है, मूर्ख है, उसको पता ही नहीं है कि ब्रजवासियों के आंखों पर पलक नहीं लगाना चाहिए। केवल एक ही दुख है तो उनका पलक गिरता है, ये वर्णन करता है। तो ये तो उनके सौभाग्य का वर्णन करते हैं। और देखिए कृष्ण कथा कैसे संक्षेप में कहते हैं, वह भगवान पिता के घर में कंस के कारागृह में जन्म लेकर और अपने पिता को निर्दिष्ट करके ब्रज में चले आए, और ब्रज में आकर ब्रज में धितार्थ हो जातो गतः पित्त गृहाद ब्रज में धितार्थ हो हत्वा रिपुन सुत सतानि कृतो रुदार, और ब्रज में अद्भुत लीला किए, फिर मथुरा में जाकर कंस का वध करके फिर द्वारिका में गए, और द्वारिका में जाकर के हजारों विवाह किए और सुत सतानि, और फिर अनेक पुत्र उत्पन्न किए, उत्पाद्य तेस पुरुषः क्रतुभि समीजे, फिर आदर्श गृहस्थ के रूप में अनेक यज्ञ किए और यज्ञ में अपनी आराधना किया कि आत्मान मात्म निगमम प्रथयन जनेषु। प्रश्न हो सकता है यज्ञ किसके लिए किए, तो एक आदर्श गृहस्थ के रोल अदा करते हुए, उनको पूरा करते हुए श्री भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए यह एक आदर्श दिए यज्ञ करके। फिर पृथ्व्या स वही गुरु भरम छपयन कुरूणाम, पृथ्वी में बढ़े हुए भार को दूर करने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था किया, कुरुक्षेत्र में जादों कौरों और पांडवों की सेना इकट्ठा करके पृथ्वी का बहुत बड़ा हुआ भार को एक जगह समाप्त किए। और अंतः समुद्र कलिलाम युद्ध भूम चंब, पृथ्वी पर जितने भूप थे उन सबको जुटा कर कुरुक्षेत्र में सबको मरवाए। दिशा विधु ये विजय जय मुद विघोष्य, केवल शत्रुओं का, दुष्टों का, असुरों का वध ही उनका अभीष्ट नहीं था, संपूर्ण जगत में अर्जुन के विजय की डंका बजाए, अजय विजेता अर्जुन। अंत में प्रोच्योध्वाय च परम समगात स्वधाम, फिर वहां द्वारिका से जाकर प्रभास में अपने जादों का भार जो बढ़ा हुआ था उसको भी शांत किए और अंत में उद्धव को अपने विषय में ज्ञान देकर अपने नित्य लोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान की जय। हो गई कथा। कथा एक श्लोक में पूरा कर दिए, दो श्लोक में। अब इतना संक्षेप में बहुत स्वादिष्ट पदार्थ, बड़ा पौष्टिक पदार्थ, और केवल जीभ पर टच कराकर थाली हटा दिया जाए नहीं तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। एकदम थोड़ा सा टेस्ट देते हैं और बड़ा मधुर स्वादिष्ट पदार्थ। तब महाराज कह करके जब सुखदेव गोस्वामी शांत हो गए, कृष्ण कथा पूरा हो गई खत्म, तब वो कृष्ण कथा पूरा करके जब सुखदेव गोस्वामी चुप होते हैं तब महाराज पूछते हैं कि अरे अरे आप क्या कर दिए, कथितो वंश विस्तारो, आपने वंश विस्तार तो बहुत किया, अनेक राजाओं की कथा किया, सोम सूर्यो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का, अराघ्यम चोभय वंशानम, दोनों वंशों में जो भवत चरितम परमाद्भुतम, परम अद्भुत चरित्र का वर्णन आपने किया, यह तो अच्छी बात है आपने राजाओं का वंश वर्णन किया, लेकिन इससे हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। आपने सूर्य वंश चंद्र वंश के अनेक राजाओं का वर्णन कर दिया, लेकिन यदोश्च धर्मशीलस्य, अम चंद्र वंश में उत्पन्न धर्मशील राजा नितरा मुनि सप्तमा, हे मुनियों में मननशील विवेकी महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ, हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, अपनी जिज्ञासा का समाधान मैं थर्ड क्लास के लोगों के पास क्या कर सकता हूँ, जबकि वक्ता आप जैसे मुनियों में श्रेष्ठ मननशील सुखदेव गोस्वामी उपस्थित है, तो तत्ता अंशे नवतीर्णस्य बीर्जो बीर्जाणी संसनः, आपने जो अभी अभी भगवान की महान महिमा को विष्णु बीर्जाणी, विष्णु के बीर्ज की महिमा कहा, देखिए भागवत में विष्णु कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। विष्णु का अर्थ चतुर्भुज और नारायण वैकुंठ पति को नहीं समझना चाहिए, विष्णु का अर्थ है जो कण कण में हर जगह निवास करता है उसको विष्णु कहते हैं, सर्व व्यापक को विष्णु कहते हैं, और एक ही जगह कृष्ण विष्णु गोविंद अर्थ हरि अर्थ में प्रयोग हुआ है, एक ही श्लोक में एक ही जगह कई बार। जब महाराज भगद्वारिका जा रहे हैं प्रथम स्कंद के आठवें अध्याय में, जहां कुंती महारानी की स्तुति का वर्णन है, उसके ऊपर के श्लोकों में शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार थे, रथारूढ़ थे, रथ पर बैठे हुए थे, उसी समय अश्वत्थामा 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, 5 पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भस्थ शिशु परीक्षित के लिए। तो उत्तरा तो दौड़ कर आ गई, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगत पते, तो उत्तरा की प्रार्थना से भगवान उसके गर्भ के भीतर प्रवेश करके बच्चे की रक्षा किए, और ये पांडव लोग समझ ही नहीं रहे थे वो क्या रहा है, अपना अपना हथियार उठा लिए, तो भगवान समझ गए कि इन लोगों की बस की बात नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र का समन केवल ब्रह्मास्त्र से हो सकता है, एक गदा से और गांडीव से इसका समाधान नहीं हो सकता। तो भगवान क्या किए कि उसी रथ पर बैठे बैठे अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर उस ब्रह्मास्त्र से पांडवों की रक्षा कर लिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह है यहाँ व्यसनम वीक्ष तत्ते साम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शन न स्वास्थ्य न स्वानम रक्षम वेदात विभु, अपने भक्तों के दुख को जब भगवान देखे, जो विभु है विष्णु स्वरूप है, बैठे हैं रथ पर कृष्ण, लेकिन उनके दुख को देख रहे हैं विष्णु, विष्णु जब उनके दुख को देखे कि हमारे शरणागत अनन्य विषयात्मना पांडवों पर अचानक अकस्मात विपत आ गया और ये बेचारे जानते नहीं कि इसका निराकरण कैसे हो सकता, ये प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दुख को देखकर विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर, कहते हैं कि सुदर्शन न स्वास्त्रेण, अपने अस्त्र सुदर्शन से स्वानम अपने लोगों की रक्षा व्यधात कर लिए, विष्णु ने सुदर्शन छोड़कर अपने भक्तों की रक्षा कर लिया, तो वहां विष्णु नहीं थे कृष्ण थे, कृष्ण के लिए विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ। तो यहाँ उसी प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि वही भगवान जिनकी सर्वव्यापकता है, सब जगह रहते हैं, और उनके वीर्य का, उनकी महिमा का वर्णन आपने जो किया है। और तिरजा जदोर्वंश से भगवान भूत भावना जदवंश में जो जीवों के हितकारी जनार्दन भूत भावन श्री भगवान जो अवतार लिए, कृतवान यान विश्वात्मा तानी नो बद विस्तरात। देखिए यहाँ कृष्ण नाम ले ही नहीं रहे हैं, कहीं विष्णु कह रहे हैं, कहीं विश्वात्मा कह रहे हैं, कहीं जनार्दन कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं। और तिरजा जदोर्वंश से भगवान भूत भावन कह रहे हैं, और कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो बद विस्तरात। आप भगवान विश्वात्मा के, विष्णु के और भूत भावन के परम अद्भुत चरित्र को विस्तार से कहिए, कृष्ण नाम लिए ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ही भूत भावन है, वही विष्णु है और वही विश्वात्मा है, उनका एक पर्याय नाम है। तो आप उसको विस्तार से वर्णन कीजिए, हमको संतोष नहीं हुआ। फिर अपने कथा समर के औचित्य को भी विस्तार से वर्णन करते हैं। अगर मान लें कि सुखदेव गोस्वामी कहें कि अरे 3.5 दिन तो बीत गया, चौथा दिन चल रहा है, और तुम विस्तार से कृष्ण चरित सुनना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है, क्यों सुनना चाहते हो? 3.5 दिन 4 दिन दिन रात कथा सुन रहे हो, कुछ विश्राम कर लो, कुछ भोजन कर लो, फिर कथा होगी। तो महाराज परीक्षित अपने सुनने के औचित्य को बतला रहे हैं कि सुनना बहुत जरूरी है, हमको भूख प्यास नहीं सता रहा है। जिस भूख और प्यास के कारण मैं ब्राह्मण का अपमान किया, वह भूख प्यास पता नहीं कहाँ चला गया। नैसाती दुस्साहा छुन्मा त्यक्तो दम विवाद त्वंतम तन मुखाम भोजन च्युतम हरि कथा मृतम। साधारण भोजन की जरूरत क्या है, आपके मुख से जो अमृत च्यू रहा है, उस अमृत को पी कर मैं तृप्त हूँ, मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं, आप कथा कहते रहिए, मैं विश्राम नहीं चाहता हूँ, और मुझे कृष्ण कथा सुनना बहुत जरूरी है। कृष्ण कथा सबके लिए जरूरी है, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं कह रहे हैं, कई श्लोकों में वर्णन करते हैं कि जो संसार के विषयों से पूर्ण विरक्त हो चुके हैं, जिनको संसार चाहिए नहीं, जो परम विरक्त हैं, ऐसे परमहंसों के लिए भी कृष्ण कथा ही लक्ष्य है। निवृत्त तरसई रूपगी अमानत, जो निवृत्तता को प्राप्त हो चुके हैं उनके लिए भी कृष्ण कथा जरूरी है, और जो संसार के दुख भोग रहे हैं उनके लिए तो भव औषधि है। इस भव रोग में ग्रसित जीव के लिए कृष्ण कथा ही एकमात्र औषधि है, दवा है। और विषयी लोगों के लिए कृष्ण कथा से बढ़कर कोई मनोरंजक विषय नहीं है, ये फर्स्ट क्लास के सिनेमा है। इन कर्मियों के, संसारिक भोगियों के लिए भी इसमें मैटर है, विरक्तों का भी मैटर है और भव रोगियों का भी मैटर है, कोई बचा नहीं इस कृष्ण कथा से। कृष्ण कथा सबके लिए उपादेय है, सबके लिए इंटरेस्टेड विषय है। जो रोगी है उसके लिए औषधि है, जो विरक्त है उनके लिए तो कहना ही नहीं है। सूत गोस्वामी तो कहते हैं कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बड़े बड़े आत्मा विरक्त जिनको संसार चाहिए नहीं, उनके लिए भी भगवान की कथा चाहिए, और कुछ चाहिए या नहीं, कथा जरूर चाहिए। इत्थम भूत गुणो हरि, यह भगवान श्री हरि के गुणों की विशेषता है। सुखदेव जैसे महाभागवत जो एकदम सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते थे, उनको भी रमा देने वाली एक कथा है। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जन्म लेते ही मन में चले गए, उनका चित भी रमा दिया, और वे अपने मति को धिक्कारने लगे कि कहां मैं थर्ड क्लास के विषयों में पढ़ा था। जब भागवत व्यास जी के द्वारा सुने, तो व्यास जी के मुख से जब कथा सुन लिए, तब उनके मन में आने लगा कि अरे अरे, मैं तो गड़बड़ स्थिति में था, मुझको भागवत के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहिए। अपने स्थिति पर अपने मति को धिक्कारते हैं, यह उचित नहीं हुआ, मेरा समय बहुत बीत गया। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी परम विरक्त चूड़ामणि है, फिर भी भागवत सुनने में रम गए। ये प्रश्न है सौनक जी का कि ऐसे विरक्त चूड़ामणि, चौथे अध्याय में प्रश्न है, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि इतना बृहद ग्रंथ का अध्ययन किए। अरे जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, वो दिन रात कंपटीशन तैयार करने के लिए पढ़े मरे, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, कुछ बनना तो था नहीं। 18,000 श्लोकों से समन्वित भागवत का अध्ययन क्यों किए, क्या उनको गरज था? ये सौनक जी का प्रश्न है। और दुनिया के लोग जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, सार्वभौम सम्राट है, जिनका लाइफ कितना बिजी है, उनको कहां से फुर्सत मिल गया भागवत सुनने का? जिनके पास कुछ नहीं वो कहता है कि मैं बिजी हूं, मुझे टाइम नहीं है। समय दिया जाता है कि 7 से 10 बजे कथा होगी तो आता है 8:30-9 बजे। बिजी लाइफ है, फुर्सत ही नहीं है। और जो सार्वभौम सम्राट है उनको कहां से फुर्सत मिल गया, जिनके चरणों में दुनिया के बड़े बड़े राजा नमन करते थे, उस परीक्षित को फुर्सत कहां मिल गया? एक को फुर्सत नहीं, और एक को कुछ किसी से मतलब नहीं, ऐसे वक्ता श्रोता का संयोग कैसे बन गया? ये प्रश्न है सौनक जी का। तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह है इत्थम बुद्ध गुणो हरि ही, यह भगवान श्री हरि की विशेषता है। अगर कोई अचानक कृष्ण कथा को सुन लिया तो संसारिक आसक्ति को समाप्त कर देता है, सारा जो बिजी लाइफ है वो छूट जाता है, समझ में आ जाता है अपनी मूर्खता, मैं कहां फंसा हूं। अरे अरे कितना भारी अज्ञान है। बलि महाराज कहते हैं कि हमारे पितामह प्रहलाद क्यों मस्त रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये स्वजनाक्ष दस्यु, ये जो स्वजन की संज्ञा लिए हुए घूम रहे हैं, बेटा बेटी स्त्री मित्र परिवार रिश्तेदार, ये सब डाकू हैं, हमें लूट रहे हैं। स्वजनाक्ष दस्यु, इनकी संज्ञा स्वजन का है लेकिन है एक नंबर का डाकू, सारा जीवन बर्बाद कर दिए इन्हीं लोगों के कारण, जो भी कमाई है जीवन का वो सब लूट रहे हैं। ये पता चलता है, अपने पोजीशन का ज्ञान होता है, अपनी स्थिति का, तो फिर संसार छूट जाता है। और जो विरक्त चूड़ामणि है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसको समझ में आता है कि कृष्ण कथा ही बेहतर सुख है। उसको सुनने में जो माधुरी है, उनका जो परस्पर भक्तों से व्यवहार है, उसको जब सुनता है तब समझ में आता है कि बाप रे ये तो अद्भुत चीज है। सुखदेव गोस्वामी जब सुने अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान तया पाय जदप्य साध्वी लेभे गतिम धात चिताम ततन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। उद्धव जी कहते हैं कि इससे भी कोई दयालु होगा जो स्तन में हलाहल विष लेकर आई, उस विष के बदले में धात्री गति प्रदान कर दिए। धात्री गति सेकेंड माँ, यशोदा के बाद दासी माँ बना दी को, ऐसा कोई दयालु होगा? और फिर जब उनके रूप का वर्णन सुने, बरहा पीनम नटवर बपु कर्णे कर्णिकारम बिभ्रत वासह कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंधन वेणो रधर सुधया पूरेयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति ही। जो गोप सखाओं से आविष्ट होकर नटवर वेश में थिरकते हुए बंसी बजाते चल रहे हैं, सीधा नहीं चलना जानते, नाचते हुए चलते हैं, और गायों के खुर से उड़ा हुआ ब्रजरज धूल उनके शरीर का सिंगार है, कोई पाउडर नहीं, बाल में मुख पर आंख के ऊपर चारों तरफ धूल पड़ा है, और जो बनमाला पहने हुए हैं और कनेर का फूल जो कान में लगे हुए हैं, और गोप सखा उनके जस की बखान करते हुए उनके साथ चल रहे हैं, थिरकते हुए नाचते हुए जो वृंदावन से नंदगांव की ओर चल रहे हैं, उस सौंदर्य चूड़ामणि भुवन सुंदर के रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी सुने तो विभोर हो गए। अरे लोग ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए जाते हैं, ये धूल से इतना सुंदर लग रहा है, गाय के धूल से, और इतनी मस्ती में आनंद में थिरकता हुआ नाचता हुआ आता है, कौन है, उसका क्या परिचय है, उसको जानने के लिए पूछने लगे व्यास के शिष्यों से, वो कहाँ मिलेगा, कौन है, चलो ना हमारे गुरु महाराज सब जानते हैं। आकर बैठा दिए व्यास जी के पास, और व्यास जी कहे कि बेटा दो श्लोक में उनके गुणों का वर्णन नहीं होगा, तू सुनना चाहता है उनके विषय में? हाँ। तो सुनने में इतना टेस्ट आया कि 18,000 श्लोक सुन गए। उनको कुछ बनने के लिए नहीं सुनना था, उस कृष्ण कथा का यह विशेषता, इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम श्लोक की व्याख्या एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के पास चैतन्य महाप्रभु किए, पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य इसकी व्याख्या किए, लेकिन 9 प्रकार से व्याख्या करने के बाद भी महाप्रभु कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा क्या नहीं समझ में आया, तो इसकी व्याख्या नहीं समझ में आती। वेदांत सूत्र के क्रम में उस श्लोक पर चर्चा हो गई, तो वेदांत सूत्र के जो भाष्य है उसको ढक देता है। सूत्र तो सूरज की तरह है, लेकिन आपकी व्याख्या बादल की तरह है, ढक देता है। तो कहते हैं और उसको समझ रहे हो? तो हाँ, वो तो मैं सूत्र तो समझ रहा हूँ एकदम स्पष्ट। तो कहे अच्छा क्या समझ रहे हो? तो सार्वभौम भट्टाचार्य के व्याख्या का बिना टच किए, उनको तो छुए भी नहीं, और लगे वर्णन करने। वर्णन करते 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 और भी और ज्यादा अर्थ कर सकते हैं, वहां 18 प्रकार से व्याख्या किए। सुन करके सार्वभौम भट्टाचार्य चकित हो गए और एकदम सीधे चरणों में गिर पड़े। कहे आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, इस नूतन युवक सन्यासी के रूप में आप हैं कौन, अपना स्पेशल परिचय बताइए। मैं समझ गया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, प्रभु आप मुझे छल मत कीजिए। तब भगवान उनको दर्शन देते हैं षड्भुज रूप में। मैं ही श्री कृष्ण वंशी वादक, मैं धनुष बाण लेने वाला श्री राम, और ये त्रिदंड और कमंडल लेने वाला गौर चैतन्य। षड्भुज रूप में दर्शन दिए सार्वभौम भट्टाचार्य, और तब सार्वभौम भट्टाचार्य की आंखें खुली। दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान उनकी व्याख्या से चकित हो गया। इस कथा को सनातन गोस्वामी सुने थे, तो सनातन गोस्वामी भी काशी में जिज्ञासा करते हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं मध्य लीला का 24वां परिच्छेद। 24 चैप्टर में सार्वभौम सनातन गोस्वामी महाप्रभु से जिज्ञासा करते हैं कि हे प्रभु, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने जो आत्मा राम श्लोक की व्याख्या किया था उसको हम सुनना चाहते हैं। तो महाप्रभु वहां वर्णन करते हैं, तो उनके सामने तो 18 अर्थ किए थे, इनके सामने 61 अर्थ किए खूब विस्तार से। तो आत्मा राम श्लोक के एक श्लोक की व्याख्या 61 प्रकार से किए, 61 अर्थ किए एक एक शब्द का। तो भगवान इत्थम गुणो हरि ही मेन फोकस है, यह है भगवान के गुण की विशेषता, हरि की विशेषता। तो इसको महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि सबका विषय है, सबके आत्मा के साथ परमात्मा रूप में सबके हृदय में रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मुझसे स्पेशल संबंध है इसलिए मैं कृष्ण कथा सुन रहा हूँ, और मुझसे तो इतना अधिक संबंध है कि मेरे पितामहों को कौरों के उस महासमरांगण में कौरों सैन्य सागर से हमारे पितामहों की रक्षा किए, इस कथा को कौन नहीं जानता। इतने निकटतम बंधु श्री कृष्ण की कथा सुनने का भरपूर अवसर मिला है, इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी आप इसका वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। और व्यक्तिगत मुझसे, मैं तो दर्शनार्थी माता के गर्भ में ही किया, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रथम दर्शन मंगला आरती दर्शन आरती माँ के गर्भ में जिनका किया, जिन्होंने मेरे ब्रह्मास्त्र जले हुए शरीर की रक्षा किया, उस परम प्रेष्ठ परम बंधु कृष्ण की कथा मैं क्यों नहीं सुनना चाहता, और इतना संक्षेप में नहीं, विस्तार से कहिए। तानी नो बद विस्तरात, उसको विस्तार से कहिए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। सभी लोगों से कृष्ण का संबंध है, सबके हृदय में परमात्मा रूप से है। आप वर्णन कीजिए, कहाँ से वर्णन करूं? अगर सुखदेव गोस्वामी पूछ दें कि जिज्ञासा करो कहाँ से चालू करूं, जन्म से कर्म से किधर से, तो कहते हैं कि पहला तो मेरा प्रश्न है कि आप वसुदेव के पुत्रों के रूप में, रोहिणी और देवकी के पुत्रों के रूप में बलराम का वर्णन किया, देवकी के पुत्रों के नाम में भी बलराम का नाम लिया और रोहिणी के पुत्रों। तो यह मेरा प्रश्न है कि बिना देहांतर किए, बिना देह बदले एक ही बार दो माताओं का पुत्र कैसे हो गए? श्री बलराम इसके विषय में बतलाइए। और भगवान आप वर्णन किए कि जन्म लेने के बाद ब्रज में चले गए, फिर मथुरा और द्वारिका में गए, तो कितने साल ब्रज में रहे, कितने साल मथुरा में और द्वारिका में? फिर भगवान ने विवाह किया, आप कहते हैं सैकड़ों विवाह किए, सैकड़ों पुत्र उत्पन्न की, कितना विवाह किए उसको गिन कर तो बतलाइए। और फिर कहते हैं कि इस प्रकार भगवान जदुवंश में कितने साल रहे, द्वारिका में, और ये सब मेरी जिज्ञासा है। एक और जिज्ञासा है कि सभी लोग अपने मंदिरों से प्रेम करते हैं और भगवान अपने माँ के भाई मामा का वध क्यों कर दिए? ये भगवान पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, कंस के वध का औचित्य सुनना चाहते हैं कि एक नंबर हरामी था, उसको मारना जरूरी था, इसकी व्याख्या कीजिए, कितना नीच स्तर का मामा था, इसको हम सुनना चाहते हैं। यह नहीं कि भगवान पर आरोप लगा रहे हैं कि अपने मामा का वध क्यों किए। इसके बाद अंत में कहते एतद अन्यश्च अन्यस्त सर्वम में मुने कृष्ण विशेषितम। मैंने जो पूछ दिया, केवल आप इतना में ही सीमित मत रहिएगा, कृष्ण की और जो चेष्टा है जो हमारे लिए हितकारी है, वक्तु महर्षि सर्वज्ञ तदानस्त विस्तार से वर्णन कीजिए। हर बार विस्तार से कह रहे हैं, विस्तार से सूत्र रूप में नहीं, पूरा एनालिसिस करके वर्णन करना है व्याख्या के साथ। और भूख प्यास की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर इस कृष्ण कथामृत को सुनते हुए 7 दिन पूरा हो गया तो सार्थक है, बीच में ही अगर शरीर छूट जाए तो क्या दिक्कत है? हम इसको सुनना चाहते हैं और कुछ नहीं सुनना चाहते, केवल कृष्ण कथा। और फिर अन्यश्च कहकर कहते हैं एतद अन्यश्च, एतद जो मैं कृष्ण कथा पूछ रहा हूं इसके अतिरिक्त भी आपको जो मेरे हित के लिए उचित लगे उसको भी कहिए, उसको भी आप कह सकते हैं जो मेरे लिए हितकारी हो। तो हमारे आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी आदि आगे कहते हैं कि एकादश स्कंद की कथा को सुदेव गोस्वामी अन्यश्च के अर्थ में कहना प्रारंभ किए, जैसे नव जोगेंद्र संवाद। यह प्रश्न नहीं है महाराज परीक्षित का, अचानक सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुत्व अवासित नारदो विष्णुम कृष्णोपासन लालस। भगवान कृष्ण के भुजाओं से सुरक्षित द्वारिका में देवर्षि नारद आया करते थे, बिना प्रश्न के चालू कर दिए। और देवर्षि नारद वसुदेव जी के घर में गए और वसुदेव जी के जिज्ञासा पर नवजोगेंद्र संवाद कहे, बहुत महत्वपूर्ण है, भागवत धर्म का वर्णन है। तो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शायद अन्यश्च जो हमारे हित के लिए दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है उसको भी कहिए। तो इतना सुंदर प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित कि इन्हीं के बेस पर पूरा दशम स्कंद टिका हुआ है। तो दशम स्कंद की कथा विस्तृत जो 2 श्लोक में पूरा हो गया था कृष्ण कथा, उसको 90 अध्याय में पूरा किए। यह है विस्तरात, विस्तार से 2 श्लोक की कथा को 90 अध्याय में पूरा किए हैं महाराज परीक्षित की जिज्ञासा को जानकर। आखिर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त न करे तो कैसे दिया जाए? कितना हो अच्छा हो, कोई सर्विस करने वाला व्यक्ति देना चाहता है, कोई मना करे बार बार, तो उसके मन में क्षोभ होगा कि इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक चीज है, खा क्यों नहीं रहा है? लेकिन दे नहीं सकता जबरदस्ती, अगर कोई मांग रहा है तब तो दिया जाएगा, हाँ चाहिए चाहिए, थोड़ा सा और दीजिए, तब देने वाला को आनंद आएगा, देगा आनंद। देना चाहता है लेने वाला ले ही, अनिच्छा प्रकट करे अथवा अरुचि प्रकट करे, ना कहे तो फिर कैसे देगा? तो वास्तव में सुखदेव को स्वामी कृष्ण कथा देना चाहते थे, इसीलिए संक्षेप में टेस्ट दिए। और केवल टेलर से तो उनको संतोष होगा नहीं, तो फिर विस्तार से सुनना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप विस्तार से वर्णन कीजिए, इसको हम सुनना चाहते हैं। तो फिर आगे भी आप इसको पढ़ते सुनते रहिएगा। केवल हम सुखदेव गोस्वामी के शैली में थोड़ा सा टेस्ट दिए, आप फिर इसको विस्तार से समझते रहिएगा। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है दो चार मिनट के लिए? नहीं नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। भागवत की भी यही शैली है, कथा सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और कुछ सुनना चाहते हो क्या? ऐसे अनेक जगह सुखदेव गोस्वामी भी पूछते हैं अब क्या सुनना चाहते हो, और ये प्रश्न से कथा प्रारंभ होती है। आप कह रहे हैं भागवत प्रश्न से प्रारंभ हो रही है, प्रश्नोत्तर ही है भागवत। लेकिन प्रश्न का उत्तर देने के बाद वक्ता ऐसा जिज्ञासा करता है आप कुछ जानना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। कथा के बाद भी प्रश्न होता है, ऐसा नहीं। व्यास देव जो प्रारंभ प्रश्न से थोड़े करते हैं, वे तो कथा से भागवत प्रारंभ करते हैं ना। नैमिष अनिमिष क्षेत्र ऋषय सौनकाद या प्रश्न थोड़े है, कथा है ना, और कथा के बीच में प्रश्न आया है, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ कथा प्रारंभ करते हैं कि नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि जुटे, यज्ञ करना प्रारंभ किए, उसी यज्ञ सत्र में सुत गोस्वामी उपस्थित हुए। सुत गोस्वामी को देखकर ऋषियों के मन में आया कि हम जो काम कर रहे हैं उचित है कि नहीं। हायर अथॉरिटी आ गया, बड़ा जानकार व्यक्ति सुत गोस्वामी। तीन महान व्यक्तियों के कृपा पात्र थे, एक व्यासदेव, दूसरा सुखदेव गोस्वामी का, और तीसरा श्री बलराम का। तो इतने महान श्री बलराम उनको आशीर्वाद दिए थे, रोमहर्षणी सुत वहां उपस्थित थे, रोमहर्षण जी के पुत्र। तो उनको सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत सुनने को मिला था, और पूरा भागवत सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने भविष्यवाणी की थी कि यह भागवत आने वाले भविष्य में यह सूत नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को सुनाएगा, बोल दिए हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये लोग जानते थे शौनक जी कि सुखदेव गोस्वामी का कृपा पात्र है, व्यास जी का कृपा पात्र है, और श्री बलराम। बलराम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी मर गया तो ठीक है, चलो अब इसके पुत्र को मैं वो क्षमता देता हूँ, ये आप लोगों को सुनाएगा। तो इतने महान अथॉरिटी उपस्थित हुआ, तब उन लोगों के मन में आया कि इनसे पूछा जाए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। जानी दाढ़ी लागी पूछे साधु रस स्वभाव, अपनी ज्ञान की दृढ़ता के लिए मैं उचित जानता हूँ कि अनुचित जानता हूँ, कोई बड़े से उसका सर्वेक्षण करा लेना चाहिए। तो इसलिए जिज्ञासा प्रारंभ हुई। कथा तो प्रश्न से चालू नहीं हुआ है भागवत, कथा से चालू हुआ और उसमें फिर जिज्ञासा करते हैं। तो फिर जिज्ञासा करने पर उत्तर, और उत्तर देने के बाद सूत गोस्वामी बीच बीच में पूछते हैं और क्या जानना चाहते हैं। तो एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न? तो ये स्टाइल है भागवत का। नहीं, सुखदेव गोस्वामी से नहीं सुने थे, लेकिन परीक्षित महाराज प्रथम बार जीवन में कथा सुने, ऐसी बात नहीं है। जब महाराज परीक्षित के चरित्र का वर्णन आप सुनेंगे तो वहाँ वर्णन है कि उनकी प्रसन्नता के लिए जहाँ भी जाते थे तो उनके स्वागत में कृष्ण कथा का आयोजन और कृष्ण के लीला का आयोजन किया जाता था। वो कृष्ण इनका महाराज परीक्षित का सबसे फेवरेट आइटम था कृष्ण कथा और कृष्ण चरित्र। जहां जाते थे वहां के लोग एक लीला का आयोजन करते थे। ये भागवत में वर्णन है। परीक्षित महाराज प्रथम बात कथा सुने ऐसी बात नहीं है। हाँ, जीवन के अंत में श्राप मिलने के बाद जो निर्धारित हुआ कि अब सातवें दिन मरना है, तो गंगा के तट पर चले गए, किसी को इन्विटेशन नहीं दिए, चले गए, अपने पुत्र जन्मेजय को राज मुकुट दिए और अकेले गए। लेकिन यह संवाद पता नहीं कौन मीडिया काम कर रही थी उस समय, संपूर्ण विश्व को पता चल गया कि महाराज गंगा तट पर चले गए। तो राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि बड़े तेज गति से तीनों लोक से वहां आ गए और लोग आकर तरह तरह की अपनी अपनी बातें बतलाने लगे। लेकिन महाराज परीक्षित कहते हैं कि सब बकवास छोड़िए, आप लोग जुट गए हैं इतने महान ब्रह्मर्षियों के बीच में, मुझे बैठने का अवसर मिला, सब लोग कृष्ण के गुणों का कीर्तन कीजिए। खुद कह रहे हैं, पहले सुखदेव गोस्वामी के आने से पहले कह रहे हैं कि आप लोग कृष्ण चर्चा कीजिए, कृष्ण के नाम का कीर्तन कीजिए। क्योंकि अगर महाराज परीक्षित कृष्ण कथा के महत्व को नहीं जानते तो इस तरह की बात क्यों कहते। बल्कि ये कह रहे हैं कि यद्यपि मैं क्षत्रियाधम हूँ, मेरे द्वारा ब्राह्मण के चरणों में अपराध हुआ, अपमान हुआ, तक्षक सांप डाल दिया मरा हुआ, फिर भी मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने जीवन के अंत में इतने महान पुरुषों के बीच हूँ। तो इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करके मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग कृष्ण कीर्तन कीजिए, कृष्ण कथा कीजिए। सुखदेव गोस्वामी अभी नहीं आए हैं तभी वर्णन है, पहले ही कह रहे हैं महाराज। अगर आप जानना चाहें तो मैं उस श्लोक को भी बता दूंगा। इसका अर्थ है कि वो कथा जानते थे, सुनते थे। और उनके जीवन चरित्र वर्णन है कि वे जहां जाते थे उनके प्रसन्नता के लिए कथाएं होती थी। 17-18 में वर्णन, अहो वयम जन भृतो समय तो ये कह रहे हैं, अहो वयम धन्य तमाम नृपाणाम महत्माना अनुग्रह ग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचा दुराद विशिष्टम बत गर्ह कर्म। इसके आगे कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझको तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगाम के देवी धितची तमी से और दिजो प्रशिष्टा कोका तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगा था। कहते हैं कि कितना मेरा सौभाग्य है, गंगा का पावन तट है, आप ब्रह्मर्षियों के बीच समाहित संघ है, और अगर कोई तक्षक मुझको दस भी देगा तो क्या हो जाएगा। दिजो प्रशिष्टा कोका तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगा था, आप लोग भगवान के गाथा विष्णु गाथा गाइए, तक्षक आना चाहे आने दीजिए, वो हमारे शरीर को दंशन करके मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आप लोगों के बीच गंगा के पावन तट पर आप महर्षियों के बीच में कृष्ण कथा सुनते हुए हम शरीर छोड़ेंगे, पहले कह रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी नहीं आए हैं उसके पहले। तो इसका अर्थ है कि वे कृष्ण कथा की महिमा को जानते थे, पहले भी सुने थे। लेकिन कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति की विशेषता है कि जितना इसको किया जाए उतना ही कम लगता है। यही लगता है कि मैंने सुना ही नहीं, अफसोस भी कर रहे हैं कि अहो मैं जीवन भर क्यों नहीं सुना, क्यों 7 दिन। तब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की राजन आप चिंता मत कीजिए, अभी तो आपके पास 7 दिन है ना। खटवांगो नाम राजर्षि, खटवांग नामक राजा जिसको 2.5 घड़ी टाइम था जीवन में और उतने देर में भगवान का चिंतन करके भगवत धाम चला गया, आपके पास 7 दिन है, आप मत घबराइए, कथा सुनिए। अधीरता व्यक्त कर रहे हैं कि हाय हाय मैं क्यों जीवन भर भागवत नहीं सुना। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पहले नहीं सुने थे, सुने थे लेकिन कम लग रहा था। कम लग रहा था। ठीक है, 9:30 बज गया। जय श्री लोक, जय श्री।